समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जनवरी की इस ठंडी सुबह में यह वक्त है जब एक हाथ में चाय की प्याली हो और कान हो एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी गोल्ड की तरफ, जहां समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे आपके कदम पकदम आधे घंटे तक साथ रहने वाला है। आज के आज सवेरे कार्यक्रम में मैं हूं आपकी हमसफर नईम अख्तर और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, चाय की बात सुनकर कहीं आपका ये जीते नहीं चाह रहे कि स्टूडियो छोड़ूं पहले जाकर के चाय पी के आऊं?
वेल डेफिनेटली वी विल कैरी ऑन विद दैट, बट नाउ वी आर प्रेजेंटिंग our daily news magazine program to our listeners and they will be sipping in a cup of coffee or tea, right?
तो ज्यादा मजा रहेगा कि हम इधर गर्मा गर्म बातें करेंगे और उधर गर्मा गर्म हमारे श्रोता चाय पियेंगे।
Yes, such a wonderful way, you know, to start the morning with our program and a cup of coffee or tea, right?
Yeah.
So let me tell you a little bit about the program as well, listeners. We have for you over the next half an hour the latest in national and international news. We'll be providing you Metro City updates and some historical information related to today, that is 17th of January. So make sure, listeners, to stick around till the end. We will begin with the headlines first, Naeem.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में आयोजित ये देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। इसका विषय है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सपो का उद्देश्य पूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर लाना है।
President Draupadi Murmu will confer the National Sports Awards 2024 at Rashtrapati Bhavan today. World Chess Champion D. Gukesh, double medalist at the Paris Olympics Manu Bhakar, Men's Hockey Team Captain Harmanpreet Singh and gold medalist at the Paris Paralympics Praveen Kumar will be honoured with the prestigious Major Dhyanchand Khel Ratna Award. The award is given for the spectacular and outstanding performance in the field of sports by a sportsperson over the past 4 years.
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दिसंबर 2024 में 35.11% बढ़कर दो साल के उच्चतम स्तर 3.58 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी महीने में 2.65 बिलियन डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये उच्च मूल्य वाले भारतीय सामानों की विदेशी मांग में वृद्धि और बढ़ती घरेलू उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल दिसंबर अवधि में देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 28.6% बढ़कर 26.11 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2023-24 की इसी अवधि के दौरान 20.3 बिलियन डॉलर था। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भारत के निर्यात क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले हिस्से के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्मार्टफोन निर्यात में 45% की वृद्धि दर्ज की गई है।
Prime Minister Narendra Modi will distribute over 65 lakh property cards under the Swamitva scheme to property owners in over 50,000 villages across 10 states and 2 union territories tomorrow via video conferencing. The scheme, launched by the Prime Minister, aims to enhance the economic development of rural India by providing a record of rights to households through advanced drone technology for surveying. It also facilitates property monetization, enables access to institutional credit through bank loans, reduces property-related disputes, and supports better property assessments and property tax collection in rural areas.
महाराष्ट्र की फिल्म संस्कृति पर आधारित 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कल मुंबई में संपन्न हो गया है। 10 से 16 जनवरी तक आयोजित इस फिल्म महोत्सव के दौरान अंधेरी, सायन और ठाणे में एशिया की श्रेष्ठ 61 फिल्में दिखाई गईं। प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति सम्मान और प्रोफेसर अनिल झंकार को सुधीर नंदगांवकर की स्मृति में फिल्म लेखन के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म जिप्सी को सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म और इसी फिल्म के लिए शशि खंडारे को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
President of Singapore Tharman Shanmugaratnam held in wide-ranging discussions with President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday evening. The talks focused on further strengthening the comprehensive strategic partnership between India and Singapore. President Murmu highlighted that Singapore is a key pillar of India's Act East policy and its vision for the Indo-Pacific. She noted that with a shared history and a long-standing tradition of friendship based on trust and mutual respect, India-Singapore cooperation has gained further momentum in recent years. Prime Minister Narendra Modi also met with President Shanmugaratnam, where they extensively reviewed the bilateral partnership and exchanged views on regional and global issues of mutual interest.
और शगुन अब हमारे पास खबरें हैं कुछ महाकुंभ से.
जी,
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर. कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल. सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर. इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर.
प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बीते 6 दिन में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं. ये स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था. त्रिवेणी के संगम पर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हो रहे हैं. हमारे संवाददाता ने बताया कि कल 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों के संगम में स्नान किया.
महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया भर के देशों से श्रद्धालु पवित्र संगम के आध्यात्मिक वातावरण में डुबकी लगा रहे हैं. महाकुंभ के पहले दिन 13 जनवरी को रिकॉर्ड 1,70,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जबकि अगले दिन मकर संक्रांति के अमृत स्नान के दौरान 3,50,00,000 से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई. राज्य सरकार के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. 45 दिनों का महाकुंभ मेला अगले महीने की 26 तारीख तक चलेगा. आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज.
और आज सवेरे में आप प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें. चेन्नई से क्या है आपके पास?
राइट, बिगिनिंग विद चेन्नई. नईम, द चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च द मिशन शक्ति सात यस्टरडे. 12,000 high school girls from 180 countries joined the mission in partnership with ISRO and InSpace. The mission aims to empower girls through comprehensive training in mathematics, physics, satellite making, PCB designing, coding and HAM radio technology. The 120-plus hour course modules for the girls have been released online, allowing all students to learn during their leisure time. According to Dr. Srimati Kesan, the founder of the startup, students who successfully complete the course will be given hands-on training to send a satellite aimed towards the lunar orbit as part of Mission Chandrayaan 4. We have some more news from Chennai.
Ji.
The project to widen a 500-meter stretch of the Grand Southern Trunk Road beneath the Pallavaram flyover has commenced. The 3-lane road is expected to ease traffic for motorists leading to Pummal and Kundrathur, suburban areas southwest of Chennai. The Pallavaram flyover was originally planned as a wide bridge to streamline access from the southern outskirts to China International Airport. However, land acquisition challenges forced the construction of a narrower lane structure. The roadwork is expected to be completed next month. Over to you, Nadi. Nahin now.
Ji, Delhi se mere paas do khabrein hain. Delhi Vidhan Sabha chunav ke liye namankan patra dakhil karne ka aaj antim din hai. Ab tak kul 841 umidwaron ne namankan patra bhare hain. Namankan dakhil karne ki prakriya 10 January ko shuru hui thi. Umidwar somvar tak apna naam wapas le sakenge. 5 February ko matadan hoga aur voton ki giniti 8 February ko ki jayegi. और एक दूसरी खबर दिल्ली से यह है कि दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई कार्यक्रम के कारण आज और कल यानी शनिवार को शहर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित होगी उनमें आजादपुर मंडी, सादिक नगर और आसपास का क्षेत्र, जहांगीरपुरी का सी और डी ब्लॉक, भलसवा, आदर्श नगर और आसपास का क्षेत्र तथा राजौरी गार्डन शामिल हैं। जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें। लोग पानी के टैंकर के लिए जल बोर्ड को इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 1916285211123 और 1800121744।
Now focusing on Bengaluru.
जी,
the Karnataka State Dr. Gangubai Hangal Music and Performing Arts University in Mysuru will confer degrees to 540 students during the convocation to be held tomorrow. The university is awarding degrees for the academic years 2021-22, 2022-23 and 2023-24 simultaneously, with 180 students receiving degrees for each year. On this occasion, 69 gold medals will be presented to 27 meritorious students across various courses. Additionally, 14 students will receive postdoctoral D.Litt degrees. The Vice Chancellor of the University, Dr. Nagesh Vibettakutte, has announced that the varsity will also bestow honorary doctorates on 9 individuals for their contributions to the field of classical and performing arts.
और मुंबई से जो दो खबरें मेरे पास हैं उनमें से पहली ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल गुरुवार को कहा कि मुंबई की कानून व्यवस्था को कुछ घटनाओं के आधार पर नहीं आंका जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई सबसे सुरक्षित जगह है। ये बयान गुरुवार की सुबह बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद आया है, जिसमें वो घायल हो गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए उनके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच अभिनेता सैफ अली खान की टीम ने एक बयान जारी कर कहा है कि अभिनेता खतरे से बाहर हैं और फिलहाल उनकी हालत में सुधार हो रहा है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए मुंबई पुलिस के जोन 9 के पुलिस उपायुक्त दीक्षित गेदम ने कहा कि हमले के पीछे चोरी का मकसद था। और एक और इम्पोर्टेंट खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने दूध में मिलावट के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया है। FDA की एक विज्ञप्ति के अनुसार 103 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने राज्य भर से दूध उत्पादकों, वितरकों, विक्रेताओं और सड़क किनारे विक्रेताओं से 1062 नमूने एकत्र किए। मिलावट, रासायनिक सामग्री और गुणवत्ता की जांच के लिए इन नमूनों को अधिकृत खाद्य प्रयोगशालाओं में भेजा गया। FDA आयुक्त राजेश नार्वेकर ने कहा, यदि विश्लेषण के दौरान मिलावट का पता चलता है तो संबंधित प्रतिष्ठानों से तत्काल नमूने एकत्रित किए जाएंगे और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी ने नागरिकों से FDA हेल्पलाइन नंबर 1800022235 या ईमेल आईडी jcfoodhq@gov.in के माध्यम से दूध में मिलावट के किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है।
नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू हैदराबाद।
जी,
तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सपोर्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैदराबाद्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनटू 100% इलेक्ट्रिक मॉडल। Mr. Reddy called on union ministers in Delhi yesterday and requested environmental clearances for development projects in the state. An official release stated that the chief minister highlighted the stalling of 161 projects across Telangana due to delays in environmental and forest clearances. Mr. Reddy also requested urgent clearances for the Goravelli project, stressing its importance for irrigation. The union minister assured positive consideration of these requests. In another meeting with Union Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy, the Chief Minister sought the centre's cooperation to transform Hyderabad's bus fleet into an all-electric model. Staying with Hyderabad, BRS Working President K. Tarak Rama Rao has questioned for more than 7 hours by the officials of the Enforcement Directorate into his role in the alleged financial irregularities in the Formula E race case. After coming out of the ED office, Mr. Rao revealed to the media that he provided all the information regarding the fresh deal for season 10 of the Formula E race and the transfer of funds to UK-based Formula E operations.
अब एक खबर मेरे पास कोलकाता से बची हुई है. राज्य सरकार का प्रमुख अभियान द्वारे सरकार 24 जनवरी से फिर शुरू होगा. इस अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर सरकारी शिविर लगाए जा रहे हैं. विभिन्न विभागों ने अपने अस्थायी कार्यालय स्थापित किए हैं जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और नामांकन अनुरोधों पर कार्रवाई की जा रही है. इस अभियान के तहत पश्चिम बंगाल की सरकार सीधे आम लोगों तक के दरवाजे तक जाती है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस अभियान की शुरुआत की है. और अब खबरें खेल जगत से. खो खो विश्व कप 2025 में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने ग्रुप चरण के मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया. दोनों टीमों ने अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. एक रिपोर्ट.
भारतीय पुरुष टीम ने कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भूटान को 71-32 के स्कोर से हराकर अपनी जीत की लय बरकरार रखी. इस जीत के साथ टीम ग्रुप ए में पहले स्थान पर है और क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए तैयार है. भारत ने पहले टर्न में मजबूत शुरुआत की और अपने आक्रामक कौशल का प्रदर्शन करते हुए 32 अंक बनाए. दूसरे टर्न में भी टीम ने शानदार ढंग से भूटान पर काबू बनाए रखा. तीसरे टर्न में भारत ने अपना खेल जारी रखा और भूटान को ज्यादा अंक हासिल नहीं करने दिए. चौथे टर्न में भी भूटान वापसी नहीं कर पाया और भारत ने लगातार अपनी चौथी जीत हासिल की. वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 120 के स्कोर से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार तीसरी जीत हासिल की. टीम ने शुरुआत से ही मलेशिया पर दबाव बनाए रखा. तीसरे टर्न में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन और कौशल दिखाते हुए लगातार अंक हासिल किए. उन्होंने अपने मजबूत प्रदर्शन को अंतिम टर्न में भी जारी रखा और बड़ी जीत हासिल की. इस जीत ने क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम का स्थान पक्का कर दिया. आज सवेरे के लिए अभिषेक कपिल.
Staying with Coco only, Indian men's team coach Ashwini Kumar Sharma said that the team will explore different opportunities in the quarterfinals to ensure continued success.
जिस तरीके का हमारा प्लान था उस प्लान के मुताबिक हमारी टीम ने हमारे लड़कों ने अच्छा किया और उसके बाद अब जो पोजीशन का पता चलेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच जो हमारे किससे है उसी हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपना टैक्टिक्स बनाएंगे और उसी हिसाब से लड़कों को तैयार करेंगे और आप देखेंगे कि एक नई टीम इंडिया मिलेगी आपको.
Speaking after the game, Indian women's team coach Sumit Bhatia expressed his confidence. He said that the team is performing really well in the tournament and is focused to win the quarterfinals.
आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जीत की हैट्रिक करी है और हमारी टीम क्वार्टर फाइनल पहुंच गई है. अब हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज रहेगी. अब हम क्वार्टर फाइनल में पोल डाइव, डाइव, टैपिंग इन तीन स्किल्स पे काम करेंगे और अपनी टीम को सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल तक ले जाएंगे और गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाएंगे.
Now let's talk about hockey. In the Men's Hockey India League, Vedanta Kalinga Lancers beat Delhi SG Pipers 5-1 while Odisha Warriors outclassing Sachi Rar Bengal Tigers 3-2 in Women's Hockey India League in Rourkela yesterday. We have more from our correspondent.
Two pulsating matches of contrasting characters lit up the festival of hockey yesterday. In a women's league game of the Hockey India League, Jocelyn Bertram starred in goal for the Odisha Warriors in Ranchi in a heart-stopping shootout to help them beat the Sachi Rar Bengal Tigers 3-2 after regulation time ended with the teams locked at 1-1. Though Bengal dominated the first exchanges, Odisha took the lead through the talented Baljeet Kaur in the 8th minute, who deflected in a shot from outside the circle hit by Victoria. Bengal's persistence for the equaliser paid off at the start of the second quarter when Beauty Dundung's attempt found out Bertram, who made a hash of the clearance. But she more than made up for the error in the shootout as the Warriors claimed a bonus point. In the men's segment at Rourkela, Thierry Brinkman was declared the player of the match as his brace helped the defending champions Kalinga Lancers to a thumping 5-1 victory over the bottom place Delhi SG Pipers, who are all but out of the reckoning. Though Graham Reed's Delhi began on the strong foot, Nicholas Bandurak put the Lancers ahead after a fine move in which he scored off a save of his own shot. Things were even Steven Steele the second half, but the Lancers' aggression coupled with some dubious defending by the Delhi team helped them surge ahead. Their stunning penalty corner variation in the 36th minute befuddled the Delhi defence as Arthur Van Doren deflected a clever drag flick into the net. Brinkman then joined the party with two well-taken field goals that took him to the top of the goal-scoring charts for now.
It's going to be another goal, there you go! And it's Brinkman who gets another.
Gur Sahibjit Singh added a fifth, while Corey Wire pulled one back. back for Delhi late in the day. The Lancers have climbed up to third in the table with 10 points and stay in the hunt for a place in the last four in what promises to be a tense battle as the league phase enters the business end. Today, in the only match of the day, the Delhi SG Pipers women will take on the JSW Surma Hockey Club, who have won both their matches till now. This is Sharia Chaudhary reporting for Akashvani News.
खेल खबरों के बाद बात करते हैं महानगरों के मौसम की। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आज अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Well, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have fog or mist. This will occur in early morning. The temperature will hover between a minimum of 17 degrees and a maximum of 27 degrees Celsius.
और अब 17 जनवरी के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं।
एंड वील टेक आर लिसनर्स वे बैक इन टाइम। इन द ईयर 1524, इटालियन एक्सप्लोरर जियोवानी डे वेराजांजो सेट सेल अबोर्ड फ्रेंच शिप ला दोफिन टू फाइंड अ पैसेज टू चाइना बट फाउंड नॉर्थ अमेरिका इंस्टेड। इन द ईयर 1773, कैप्टन जेम्स कुक बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस एंटार्क्टिक सर्कल।
1852 में ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की स्वतंत्रता को मान्यता दी।
इन द ईयर 1871, फर्स्ट केबल कार वाज पेटेंटेड ऑन दिस डे बाय एंड्रयू स्मिथ इन द यूएस व्हिच बिगन सर्विस इन 1873। इन द ईयर 1928 नाउ फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म डेवलपिंग मशीन वाज पेटेंटेड ऑन दिस डे।
1913 में रेमंड पॉइंटक्वेर फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए।
In 1929, the popular cartoon character Popeye, a sailor known for his love of spinach, first appeared on the Daily King Features comic strip Thimble Theatre. In the year 1981, central government offered full statehood to Mizoram.
1941 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश पहरे से चुपचाप निकलकर जर्मनी के लिए आज ही के दिन रवाना हुए थे। 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई। 1948 में नीदरलैंड्स और इंडोनेशिया संघर्ष विराम पर सहमत हुए। 1976 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने हर्मस रॉकेट लॉन्च किया। 1979 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया और 1980 में नासा ने फ्लैटसेटकॉम 3 लॉन्च किया।
In 1989, Shirley Metz and Victoria Murden became the first women to reach the South Pole on an overland route. In 1995, a large-scale earthquake struck the Osaka-Kobe region in the Japan metropolitan area, killing an estimated 6,400 people and causing major damage. In the year 2017 now, search for missing Malaysian aircraft MH370 over the Indian Ocean was called off. The plane was believed to have crashed in the Indian Ocean, claiming the lives of all 239 crew and passengers on board.
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चरण में। आज पुण्यतिथि है सुचित्रा सेन की। बेहद खूबसूरत, बेहद प्रतिभावान हिंदी और बांग्ला फिल्मों की वो अभिनेत्री जो आज तक दुनिया वालों के सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है। बांग्ला फिल्मों की अगर बात करें तो उत्तम कुमार के साथ अभिनय करने के कारण वो सारे पश्चिम बंगाल में बहुत जनप्रिय हुई और सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी आज भी बांग्ला चलचित्र की श्रेष्ठ जोड़ी मानी जाती है। शगुन वो पहली ऐसी भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें 1963 के मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म सात पाके बांधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार बंगो विभूषण भी उनको दिया गया।
रही न रही हम महता करेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में रही न रही हम।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेरेंस हैनबरी टिम वाइट राइटर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स द वंस एंड फ्यूचर किंग। One of his best known in this first series, The Once and Future King was adapted in 1960 into a highly successful musical play, Camelot, which was a motion picture also called Camelot, was based on this particular play, while other works include The Goshawk, a study of falconry, and two works of social history. And there is also one more adaptation, The Sword in the Stone, which was published as a standalone book in 1938. This was also established as American animated musical fantasy comedy film produced by Walt Disney. And we have a track from this particular movie.
With a hey dum derry and a derry dum dee, fill your noggin full of knowledge and then you'll see what a glorious experience your life will be. A noggin full of knowledge is the magic key. Magic key, magic key to what?
और आज पुण्यतिथि है ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा की, जिन्हें आप और हम बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक पंडित बिरजू महाराज। भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि थे पंडित बिरजू महाराज। उनका सारा जीवन इस कला को ऊंचाइयों तक ले जाने में बीता। उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली थी। और इतना ही नहीं, फिल्मों में भी उनका बहुत सारा योगदान रहा है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि उसका नाम आता है और पंडित बिरजू महाराज याद आते हैं। उनमें से एक फिल्म थी देवदास, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान वाली।
राइट, राइट,
जी।
मालती गुंधाए केश प्यार घुघवारे, मालती गुंधाए केश प्यार घुघवारे, मुख दामिनी चाल मत वारी, चाल मत वारी।
आज ही पुण्यतिथि है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक थे, रामपुर से हसवान घराने से ताल्लुक रखते थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान की गिनती बेहतरीन संगीतकारों में होती थी, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से नवाजा था। गुलाम मुस्तफा खान ने बहुत बड़े बड़े फिल्मी गायकों को अपने शिष्यों में शुमार किया, जिनमें से लता मंगेशकर से लेकर A.R. रहमान तक के नाम शामिल हैं। उनकी आवाज में एक गीत सुनते हैं फिल्म बंदाम बस्ती का।
Now let's talk about one of the pioneers of Indian cinema, L.V. Prasad, film director, producer, actor. Today it's his birth anniversary. Right from the early days, he was driven by the passion for acting and the moving image. Hailing from the Eluru district of Andhra Pradesh, he has acted in the first talkie of Telugu, Hindi and Tamil languages. He is the recipient of the Dada Saheb Phalke Award too.
और आज ही जयंती है कमाल अमरोही की। गीतकार, पटकथा और संवाद लेखक के साथ साथ निर्माता और निर्देशक के रूप में भी उन्होंने भारतीय सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। महल, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसी भव्य कलात्मक फिल्मों को पर्दे पर काव्य की रचना करने वाले निर्माता निर्देशक के रूप में कमाल अमरोही को याद किया जाता है। पाकीज़ा उनकी जिंदगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रही।
Well, today, it's also the birth anniversary of Muhammad Ali. Throughout his career, the late heavyweight boxing champion, Olympic gold medalist and civil rights activist garnered a reputation for his positive and motivational outlook on life. And I am quoting one of his very popular motivational quote: "He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life, and the only failure is never having tried."
आज जन्मदिन है जावेद अख्तर का। कवि, गीतकार और पटकथा लेखक के रूप में भारत की जानी मानी हस्ती जावेद अख्तर को कौन नहीं जानता। उन्होंने सलीम खान के साथ मिलकर बहुत सारी फिल्मों की पटकथा लिखी और जो गीत लिखे उनमें से एक गीत आप भी सुनिए। और विदा लेने का वक्त हो गया है अपने श्रोताओं से, तो नईम अख्तर और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।